अगर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल पर किताब लिखने वाले उनके प्रेस सलाहकार रहे संजय बारू की बात मानी जाए तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के संबंधों की पहली परीक्षा हुई थी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने के भीतर, जब मनमोहन सिंह को 15 अगस्त 2004 को लाल किले से देश को संबोधित करना था। बारू से कहा गया कि वो भाषण से एक दिन पहले उसके ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लें। जब वो लाल किले पर पहुंचे तो उन्होंने जिज्ञासावश मनमोहन सिंह के भाषण के दौरान होने वाले सिटिंग अरेंजमेंट पर नजर दौड़ाई। भाषण मंच से थोड़ा पीछे उनकी पत्नी गुरशरण कौर की कुर्सी थी, उसके बाद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की कुर्सियां थी। पहली पंक्ति में सोनिया गांधी की कुर्सी नदारद थी। जब बारू ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारी से पूछा कि सोनिया गांधी को कहां बैठाया जाएगा तो उसने चौथी या पांचवी पंक्ति की तरफ इशारा किया, जहां उनके बगल में नजमा हिप्तुल्ला बैठने वाली थी। बारू ये सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने मन में सोचा कि इससे मनमोहन सिंह को व्यक्तिगत तौर पर बहुत शर्मिंदगी होगी और सोनिया भी अपमानित महसूस करेंगी। बहरहाल अंतिम समय पर सोनिया की सीट बदलकर उन्हें सबसे आगे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठाया गया। संजय बारू ने मनमोहन सिंह को कहते बताया है कि उनकी नजर में पार्टी अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री के पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने संजय बारू से पूछा कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के संबंधों में सिर्फ यही एक जटिलता थी या कुछ और भी।
काफी साफ साफ संबंध था। मनमोहन सिंह जी भी बहुत आदर के साथ उनसे बर्ताव करते थे और सोनिया जी भी उनको एक एल्डरली पर्सन के माध्यम से देखते थे। मेरे ख्याल में उनके बीच में कोई गड़बड़ ऐसा नहीं था। मनमोहन सिंह जी ने मान लिया था कि पार्टी के प्रेसिडेंट का पोजीशन प्रधानमंत्री से ज़्यादा है। ये पहली बार ऐसा हो चुका है हमारे देश में। आचार्य कृपलानी ने जब कांग्रेस प्रेसिडेंट थे 1950s में और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा उन्होंने कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुझे बताएंगे कि सरकार में आप क्या करने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आचार्य कृपलानी से कहा, सॉरी आई कैन नॉट टेल यू। प्रधानमंत्री जो सरकार में होता है वो बाहर किसी से नहीं बता सकेंगे। अगर आपको जानना है कि सरकार क्या कर रही है तो आप मंत्री बन जाइए। और नेहरू ने कृपलानी को मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो का पोजीशन भी ऑफर किया था ताकि वो कैबिनेट में बैठे और जानकारी पाएं कि सरकार में क्या हो रहा है। जब कृपलानी कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देके वो हट गए, जब से ये पोजीशन रहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख हैं, तो मेरा कहना ये है कि जो सिस्टम ये सरकार ने चलाया जहां प्रधानमंत्री पार्टी प्रेसिडेंट से एक पद नीचे का स्वीकार कर लिया, वो गलत था।
बारू बताते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बात की छूट नहीं थी कि वो अपनी टीम का खुद चयन करें। सोनिया गांधी का ये भी प्रयास रहता था कि सरकार की जो भी सामाजिक नीतियां थीं उसका भी श्रेय प्रधानमंत्री को न मिलकर पार्टी को मिले। मैंने संजय बारू से पूछा कि क्या इसके जरिए सोनिया गांधी कहना चाह रही थी कि हु इज द बॉस।
वो सोनिया जी की कोशिश नहीं थी, पार्टी के नेताओं की कोशिश थी। उनका ये मानना था कि पार्टी इज द बॉस। ये चर्चा होता था हर वक्त, पार्टी प्रेसिडेंट हैज टू बी नंबर वन।
और प्रधानमंत्री की तरफ से वो बिल्कुल पैसिव थे, उनकी तरफ से कोई इस पे ओपिनियन, स्ट्रांग ओपिनियन नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है।
नहीं, नहीं था।
राजनीतिक रूप से बहुत नजदीकी से काम करने के बावजूद सोनिया और मनमोहन के बीच सामाजिक दूरी थी और वो दोनों आपस में बहुत घुलमिल नहीं पाते थे।
दोनों परिवारों में आना जाना बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं कभी नहीं जानता हूँ कि वो सिर्फ चाय पे आके मिले हैं परिवार के साथ। काम पे मिलते थे, फंक्शंस में मिलते थे, मीटिंग्स में मिलते थे, पब्लिक इवेंट्स में मिलते थे, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सिर्फ बैठ के कुछ बातचीत करें, गपशप करें। ऐसा सोशल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं था और उनके परिवारों में तो असल ही नहीं था। मनमोहन सिंह के 3 बेटियाँ हैं, उनके बीच और प्रियंका और राहुल गांधी के बीच कोई ऐसा, मुझे तो जानकारी नहीं है कि कोई ऐसा सोशल रिलेशनशिप था।
और ना ही गुरशरण कौर
और मिसेस गांधी। मेरे ख्याल में उनका जो भी रिश्ता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुआ।
पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज में भारत के आयात और निर्यात पर अपना शोध किया था। कैम्ब्रिज से वापस आने पर उन्हें विदेश व्यापार मंत्रालय में बतौर सलाहकार रखा गया। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह उनकी जीवनी स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में लिखती हैं।
मेरे पिता नम्रता को ताक पर रखकर कहा करते थे कि उस समय विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। वो विदेश व्यापार मंत्रालय में बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार काम कर रहे थे। उनके मंत्री थे ललित नारायण मिश्र। एक बार वो मनमोहन से नाराज हो गए क्योंकि वो कैबिनेट को भेजे जाने वाले नोट से सहमत नहीं थे। मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कहा कि तुम वापस नहीं जाओ। उन्होंने उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया और इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई।
मनमोहन सिंह ने इसके बाद योजना आयोग के सदस्य और उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख के तौर पर काम किया। 1991 में नरसिम्हा राव ने उन्हें भारत का वित्त मंत्री बनाया। नरसिम्हा राव के जीवनीकार विनय सीतापति बताते हैं।
नरसिम्हा राव के आइडियाज की कमी नहीं था, उनको एक चेहरा चाहिए, एक मुखौटा चाहिए था जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन आईएमएफ और डोमेस्टिक ओपोनेंट्स को असुवेज कर सके। तो जून 1991 पीसी अलेक्जेंडर उनके सबसे बड़े एडवाइजर हैं और नरसिम्हा राव पीसी अलेक्जेंडर से पूछते हैं, आई वांट एन इंटरनेशनली क्रेडिबल फेस एज फाइनेंस मिनिस्टर। अलेक्जेंडर ने उनको कहा कि आप आईजी पटेल से पूछिए। आईजी पटेल गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक बन चुके थे और तभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर थे। तो नरसिम्हा राव ने हाँ किया, उन्होंने वो नाम वेंकट रामन को दिया जो प्रेसिडेंट थे और फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे। आईजी पटेल ने नहीं कहा। अलेक्जेंडर ने जब फोन किया और उन्होंने कहा कि उनकी माँ बड़ोड़ा में थी, वो बहुत ओल्ड थी, ही वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ हिज मदर। फिर पीसी अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम बोला। जून 20th इवनिंग, वन डे बिफोर दी स्वेरिंग इन सेरेमनी, पीसी अलेक्जेंडर ने रात को मनमोहन सिंह को फोन किया। तब मनमोहन सिंह जी सो रहे थे क्योंकि वो फॉरेन से आए थे और फिर उनको उठाया गया और उनको कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। मनमोहन सिंह ने मुझे कहा कि 100% उसको बिलीव नहीं करते थे क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ये बोलते रहते हैं, जब तक नरसिम्हा राव फोन पे न बात करें तो वो उन पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जून 21st 12 बजे द स्वेरिंग इन सेरेमनी वॉज स्केड्यूल्ड। मेरे ख्याल से 8-9 बजे सुबह मनमोहन सिंह जी अपने घर से यूजीसी ऑफिस गए, वो यूजीसी चेयरमैन थे, और वहां पे एक फोन कॉल आया। नरसिम्हा राव फोन पे थे, उन्होंने कहा कि भाई आई वॉन्ट यू एज फाइनेंस मिनिस्टर, आप 12 बजे स्वेरिंग इन है, आप 1 घंटे पहले आइए क्योंकि मुझे वो स्पीच के बारे में बात करना है। और फिर नरसिम्हा राव ने उनको कहा कि इफ वी सक्सीड We will both get the credit. If we fail, you will have to go.
मनमोहन सिंह ने उस चुनौती को स्वीकार किया और भारत के सबसे सफल वित्त मंत्री कहलाए। संजय बारू बताते हैं कि निजी बातचीत में भी मनमोहन सिंह बहुत रिजर्व्ड हुआ करते थे। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन और चीन के प्रधानमंत्री हू जिनताओ भी उनकी तरह कम बातूनी हों तो बातचीत आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल होती थी।
वो बहुत शाय और क्वाइट थे। दूसरे लोग जब बात करते थे तो खुश थे कि और कोई बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीटिंग्स में भी ऐसे नेता लोग को पसंद करते थे जो बहुत बात करते, जैसे अफगानिस्तान के कारजाई। कारजाई वाज वेरी सोशल मैन और कारजाई बहुत बोलते थे और ये मनमोहन सिंह को ठीक लगता था कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। घर पे भी ज्यादा ऐसा ही उनका ज्यादा बातचीत नहीं होता था, तो यू वुड ऑलवेज रिमेन वेरी क्वाइट।
और जो लीडर्स जो कम बोलते थे वो मनमोहन सिंह नहीं पसंद करते थे,
मतलब इट वाज बी डिफिकल्ट। अगर आप भी कम बोले और वो भी कम बोले तो बोलना ही नहीं होता, इट वाज बी डिफिकल्ट।
मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने उन पर लिखी जीवनी में उनकी शख्सियत के दूसरे और पक्षों पर भी रोशनी डाली है।
हर 2 महीने पर हमारा पूरा परिवार बाहर खाने जाता था। हम या तो कमलानगर की कृष्णा स्वीट्स में दक्षिण भारतीय खाना खाते थे या दरियागंज के तंदूर में मुगलाई खाना। चीनी खाने के लिए हम मालचा रोड पर फ्यूजिया रेस्टोरेंट में जाते थे और चाट के लिए हमारी पसंद होती थी बंगाली मार्केट। मेरे पिता को ना तो अंडा उबालना आता था और ना ही टेलीविजन ऑन करना। हमें उनकी सरकारी गाड़ी पर बैठने का कभी मौका नहीं मिला। अगर हम किसी जगह पर जा रहे हूँ जो उनके रास्ते में पड़ती थी तब भी वो हमें अपनी सरकारी कार में नहीं बैठने देते थे। किन्हीं कारणों से उन्हें अपनी चाल पर भी नियंत्रण नहीं था। एक बार जब वो तेज चाल से चलने लगते थे तो उनकी चाल कभी धीमी नहीं पड़ती थी और उनके साथियों को उनके साथ चलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी।
संजय बारू बताते हैं कि मनमोहन सिंह को भाषण देना बिल्कुल नहीं आता था। उनकी आवाज बहुत पतली थी और वो सही शब्दों पर जोर नहीं दे पाते थे। शुरू में देश को संबोधित करने से पहले वो अपने भाषण का अभ्यास किया करते थे।
2004 में जब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच और नेशनल एड्रेस टू द नेशन, तब प्रैक्टिस करते थे, इसलिए कि वो पहला एक्सपीरियंस था उनका। 2004 अगस्त में भी जब लाल किले से उनका इंडिपेंडेंस डे स्पीच हुआ, वो भी उन्होंने प्रैक्टिस किया, मगर उसके बाद जब आदत पड़ गई तो ये प्रैक्टिस।
और स्पीच उनकी हिंदी में लिखी होती थी?
उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, गुरुमुखी या उर्दू। उनका जो एजुकेशन हुआ था बचपन से, घर में गुरुमुखी पढ़ते थे और स्कूल में उर्दू में पढ़ते थे, तो इधर उर्दू स्क्रिप्ट में होगा या गुरुमुखी में होगा।
हमारी आज़ादी सही मानों में तभी पूरी होगी जब हम अपने देश से गरीबी, अशिक्षा, भूख और पिछड़ेपन को खत्म कर पाएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब मिलकर अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ाएं और अपनी असफलताओं से सबक सीखें।
मनमोहन सिंह के बारे में 2012 में एक दिलचस्प टिप्पणी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की थी कि मुझे पता नहीं कि मनमोहन सिंह एक ओवररेटेड अर्थशास्त्री हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो एक अंडररेटेड राजनेता जरूर हैं।
अगर आप आर्थिक शास्त्र के इंटेलेक्चुअल के नाते से आप देखेंगे तो ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री पाया है, मगर उनके पीएचडी के बाद उन्हें कुछ ऐसा किताब नहीं लिखा जैसे अमर्त्य सेन या जगदीश भगवती या कई और इकोनॉमिस्ट जो है इस देश में। उनका एकेडमिक लाइफ का चर्चा करना ज़्यादा कुछ है नहीं। जब सरकार में आए 1972 में, जब वो इंदिरा गांधी के इकोनॉमिक एडवाइज़र बने, जब उनका पॉलिसी पे काफ़ी असर पड़ा 70s में। फिर उसके बाद उन्होंने यंगेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर बने, यंगेस्ट डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो पॉलिसी पे उनका प्रभाव ज़्यादा रहा। इस वजह से मैं मानता हूँ कि देश में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मनमोहन सिंह को उतना खास नहीं मानते हैं, मगर जो आप पॉलिटिशियंस हैं वो तो चमक गए कि 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इंदिरा जी के बाद इनका सबसे लंबा टेन्योर रह चुका है।
मनमोहन सिंह की मुलायम छवि को देखते हुए कम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें गुस्सा भी आता था।
वो गुस्से करते थे, लाल हो जाता था उनका चेहरा, मुझसे भी 2-3 बार मेरे को भी डांट पड़ी। मैं ऐसा कुछ करता जो नहीं मानते थे तो बुला के कहते थे, व्हाई डिड यू डू दिस। उनका शॉर्ट टेम्पर भी है, ज्यादा लॉन्ग फ्यूज है, मतलब फ्यूज इज नॉट शॉर्ट।
और आवाज ऊंची होती थी,
आवाज ऊंची होती थी। एक बार वो जयराम रमेश पे खफा हो गए, इसलिए कि जयराम रमेश ने कुछ ऐसा लीक कर दिया था, एक सोनिया जी ने एक चिट्ठी लिखा था, तो उस चिट्ठी को जयराम ने मीडिया को लीक किया और उसके बारे में बहुत खफा हो गए और उनको जयराम को फोन पे डांटा, और डांट के जयराम पता नहीं क्या कह रहे थे, मैं बैठा हुआ था वहां, एकदम फोन को नीचे धड़ बोल के लग दे, बैंग कर दे।
वाजपेयी और मनमोहन सिंह के काम करने के ढंग की तुलना करते हुए संजय बारू कहते हैं कि वाजपेयी के जमाने में ब्रजेश मिश्रा प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे और मनमोहन सिंह के जमाने में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के सचिव की तरह व्यवहार करते थे।
एक जोक था, कई लोग हमारे साथ काम करते थे जो वाजपेयी जी के कार्यालय में भी काम कर चुके थे और उनका ये मानना था कि वाजपेयी जी बुजुर्ग थे और ज़्यादा पॉलिटिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर कम थे। मनमोहन सिंह ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर थे, पॉलिटिशियन कम थे। तो वाजपेयी जी का जो स्टाइल था वो ये था कि जनरल डायरेक्शंस दें और अपने ऑफिशियल्स को छोड़ दें कि डिटेल काम ऑफिशियल्स करें। तो ब्रजेश मिश्रा जी को मिलते थे, नाश्ते पे मिलते थे, सुबह 3-4 घंटे काम कर लिए, दूसरे पॉलिटिशियंस को मिलना, पॉलिटिकल काम में वो मशरूफ थे, तो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं देखते थे। ब्रजेश मिश्रा जी प्रधानमंत्री कार्यालय को चलाते थे, मगर मनमोहन सिंह जी का स्टाइल अलग था, वो तो पॉलिटिकल लीडर थे नहीं, पॉलिटिकल काम सब सोनिया जी देखती थी। तो मनमोहन सिंह जी ज़्यादा से ज़्यादा समय मीटिंग्स में बैठते थे, कई लंबे चौड़े मीटिंग्स होते थे, रिव्यू ऑफ NREGA, रिव्यू ऑफ भारत निर्माण, रिव्यू ऑफ एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, तो 2-3 घंटे बैठ के क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है, ये काम कैबिनेट सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है, प्रधानमंत्री का तो पॉलिटिकल रोल है। तो मैं उन्हें चिढ़ाता था कि ब्रजेश मिश्रा जी को कहते थे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज लाइक प्राइम मिनिस्टर और आपके बारे में ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज लाइक प्रिंसिपल सेक्रेटरी।
रेहान पटेल, BBC दिल्ली।